ஓம் சாந்தி. குட் மார்னிங் ஆப் சபி கா. ஆஜ் கே சத் அந்திம் சத்ர மே பஹத் பஹத் தில் சே ஸ்வாகத் ஹை. தேரி கே லியே ஆப் சபி க்ஷமா சாஹேங்கே ஹம். ஆர் ரோஜ் ஆப் சபி கோ இஸ் சாந்திவன் கே பிராங்கன் மே பஹத் சுந்தர் சுந்தர் ஜானயுக்த விசார் சுன்னே கே லியே மில் ரஹே ஹை ஆர் ஆப் சபி அனுபவ் பி கர் ரஹே ஹை. தோ ஆப்கா ஜாதா சமய ந லேதே ஹுயே ஆஜ் ஜோ ஹம் சப் கே பீச் மே ஆதர்ணீய டாக்டர் சவிதா பஹன் ஜி உபஸ்தித் ஹை, ஜோ ஆஜ் ஆப் சப் கா ஜ்ஞான் ரத்னோ சே ஷ்ருங்கார் கர்னே கே லியே ஆர் ஆஜ் கா அந்திம் சத்ர ஜோ பிராப்தி கா ஹை, प्राप्ति जो अविनाशी प्राप्ति कराने के लिए आप हमारे बीच में है, उनका आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे. उनका परिचय मैं आप सबको देती हूँ. डॉक्टर सविता दीदी जी जो महिला प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजिका है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और प्रारंभ में आपने उदयपुर कोटा डूंगरपुर में सेवाएं दी. सन 1991 में आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो आप सभी ने देखा होगा, माउंट आबू में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए और 2000 तक वहां पर आपने सेवाएं दी. फिर वर्ष 2000 से लेकर 2007 तक दादी प्रकाश मणि जी, जो पूर्व मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी के व्यक्तिगत चिकित्सक एवं सहायक के रूप में रहे, सेवा दी. आपको बचपन से ही आध्यात्मिकता में रुचि रही है. 1974 के दौरान आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई. आपने वर्ष 1989 में समर्पित रूप से मानव जाति के लिए अध्यात्म को अपनाया और अपनी सेवाएं दी. आपको स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के बारे में जागरूकता लाने की बहुत रुचि है, तो ये सेवाएं आप देती रहे हैं. वर्तमान समय यहाँ माउंट आबू के अंदर सेवाएं दे रहे हैं महिला प्रभाग में. आपने भारत के विभिन्न हिस्सों में और विदेशों में, जैसे जापान है, चाइना है, हांगकांग, यूएसए आदि बहुत स्थानों पर देश विदेश के अंदर भी चक्कर लगाया है और हर एक के जीवन के अंदर स्वस्थ जीवन शैली किस प्रकार से हो उसके ऊपर लोगों को शिक्षित करने का प्रयास आपने किया हुआ है. आप महिला प्रभाग के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के संयोजक एवं आयोजन करते हैं. सन 2001 को जब भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के रूप में वर्ष के रूप में घोषित किया था, तब भी अखिल भारतीय महिला सशक्तिकरण अभियान में आपने सेवाएं दी हैं, तो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है. और आज दिन तक जो भी यहां पर कॉन्फ्रेंसेस होती है तो उन कॉन्फ्रेंसेस का भी बहुत अच्छी तरह से वो सुचारू रूप से संचालन कहो या सबको जागरूक कहो करना ये कार्य करते रहते हैं. तैसे बहुआयामी प्रतिभा आज हम सभी के बीच में है और उनके द्वारा आज हम सुनते हैं, तो आप सभी तालियां बजाकर फिर से उनका स्वागत करेंगे और उनके द्वारा ही आज का भगवान परमात्मा के द्वारा जो प्राप्ति का अनुभव है, योग के द्वारा जो भी मानव जीवन के अंदर प्राप्तियां होती है, उसके बारे में हम उनके द्वारा सुनेंगे. आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी, ओम शांति.
ओम शांति. ओम शांति. इस सम्मेलन में पिछले 3-4 दिनों से आपने जैविक खेती, योगिक खेती के महत्व को समझा और कैसे हम इस प्रकार की खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, वो विधियां भी आपने सीखी और उसके साथ साथ जीवन में कर्मों की खेती को भी कैसे हम सुधारें वो भी आपने समझा। तो जो आपके प्रातःकालीन सत्र हुए हैं राजयोग के संबंध में, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य शिक्षा है, तो आज वही राजयोग का 4th सत्र आपके लिए, राजयोग द्वारा गुणों और शक्तियों की प्राप्ति, इस विषय को हम स्पष्ट करेंगे। राजयोग से होने वाले लाभों के विषय में आपने सुना कि जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन, व्यवहार, कर्म में क्या परिवर्तन आता है, लेकिन वो कैसे आता है, कौन से गुण और शक्तियां वो हमारे विकसित होते हैं, और विशेष जब हमारे जीवन में संघर्ष होते हैं, कठिनाइयां होती हैं या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उस समय तो विशेष हमें शक्तियों की आवश्यकता होती है, तभी हम सफल हो पाते हैं। तो कौन सी शक्तियां हमें चाहिए होती हैं और वो योग से हम स्वयं में अनुभव करते हैं, तो हम इस विषय पर आज विस्तार से आपको चर्चा करेंगे। सामान्यतः मनुष्य जीवन में 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक है बाह्य शक्तियां और दूसरी है आंतरिक। बाह्य शक्ति और आंतरिक शक्ति। बाह्य शक्तियां उसमें हम कहेंगे शारीरिक शक्ति, धन की शक्ति, पद की शक्ति, और आंतरिक शक्तियों में हम कहेंगे मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, नैतिक शक्ति और चारित्रिक शक्ति है। तो हम देखते हैं दुनिया में कुछ लोग अपनी शारीरिक क्षमता को विकसित करते हैं और उसके आधार पर असाधारण प्रदर्शन करते हैं। कुछ लोग वजन उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो कई 100 किलो वजन उठा करके ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना, या हम ये भी देखते हैं कई अपने बालों से ट्रक खींच लेते हैं या दांतों से ट्रेन खींच लेते हैं, तो फिर उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में होता है। अपने यहां भी एक ब्रह्मा कुमारी बहन है जो बालों से ट्रक खींच लेती हैं और उसका प्रदर्शन उन्होंने कई बार किया है और उनका नाम भी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। ऐसे ही धन की शक्ति, पद की शक्ति मनुष्य को समाज में स्थान दिलाती है। जब हम आंतरिक शक्तियों की बात करते हैं तो बौद्धिक शक्ति के आधार पर वैज्ञानिक आज नए नए आविष्कार करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप आज कितने सुख के साधन मनुष्य को मिले हैं। अगर मानसिक शक्ति की बात करें तो हम देखते हैं जिनका मनोबल ऊंचा होता है वो जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, यानी उनमें असंभव को संभव करने की ताकत होती है। और ऐसे अनेक मिसाल हैं इतिहास में। हमारे देश में ही हम ऐसे व्यक्तित्व देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री थे, गांव में जन्म लिया, गरीब परिवार में जन्म लिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बने। जय जवान जय किसान का नारा उन्हीं का दिया हुआ था। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हम जानते हैं कि वो भी साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन अपने मनोबल के आधार पर, इच्छा शक्ति के आधार पर, चाहे जितने भी संघर्ष आए हों लक्ष्य हासिल करने में, लेकिन वो विजयी रहे। अगर हम अभी हमारी जो राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में भी हम जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, गांव से हैं और एक साधारण परिवार से, और जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वो देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। तो ये है मन की शक्ति, और इसीलिए मन के विषय में कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। व्यक्ति हारता तब है जब वो अपने मन से हार जाता है। नैतिक और चारित्रिक शक्ति मनुष्य को महान बनाती है। जैसे हम महात्मा गांधी के विषय में कहते हैं, उनकी जो नैतिक चारित्रिक शक्ति थी वो ऊंच थी, तो हमने उनको महात्मा कहा। तो राजयोग अभ्यास से हमारी इन आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। कई बार कई भाई बहने पूछते हैं कि हम राजयोग का अभ्यास करेंगे तो क्या कोई सिद्धि हमें मिलेगी, क्योंकि हमारे भारत में अनेक संत हैं जो इस प्रकार की सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। सिद्धि माना कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते हैं, वो कोई मंत्र जपते हैं और जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वो उनके सामने हाजिर हो जाएगी, या वो किसी को भभूत देंगे और कहेंगे कि आप ये भभूत लेंगे तो आपका रोग ठीक हो जाएगा या आपका जो कष्ट है उसका निवारण हो जाएगा। तो कई बार हो भी जाता है, क्योंकि ये लेने वाले की आस्था पर निर्भर करता है। अगर उसकी गहरी आस्था है तो वो भभूत भी काम करती है, और इससे उनको नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, लेकिन उससे व्यक्ति का जीवन परिवर्तन नहीं होता। तो इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने इस प्रकार की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। स्वामी रामतीर्थ के जीवन की घटना है, उनके पास एक सन्यासी आए और अपनी सिद्धियों का वर्णन करने लगे कि आपके आश्रम के पास ये जो नदी बहती है इसे मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में ऊपर उठ सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा कितने साल लगे आपको, कोई 10-12 साल लगे होंगे। उसके बाद वो चुप रहे। थोड़े समय बाद नदी पार गांव से उनका दूध वाला आया, तो उन्होंने सन्यासी के सामने ही अपने दूध वाले से पूछा, तुमने कितने पैसे में नदी पार की? कहा 2 पैसे में, उस जमाने में 1 पैसा 2 पैसा चलता था। तो उन्होंने सन्यासी को कहा कि देखो, जो काम मेरा दूध वाला 2 पैसे में कर सकता है उस काम को करने में आपने 12 साल लगा दिए, आपने क्यों सन्यास किया है? कहा ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो बोला यही आपने वो साधना की होती तो अब तक ईश्वर के समीप पहुंचे होते हैं। तो कहने का भाव, जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसी अल्पकाल की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। तो राजयोग में भी हम कहेंगे चमत्कार को हम नमस्कार नहीं करते, लेकिन हमारा जीवन ही चमत्कारिक बन जाए, यानी हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। तो हम देखते हैं हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, जिन्हें हम विकार कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये अंधकार के समान है, इनका कोई स्रोत नहीं है। जैसे अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, वो प्रकाश का भाव है, अगर प्रकाश कर दिया जाए तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही ये किन्हीं गुणों और शक्तियों का अभाव है, और जब हम उन्हें विकसित कर लेते हैं तो ये कमियां ये विकार स्वतः ही विदाई लेने लगते हैं। अगर हम वर्तमान समाज की दशा पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि घर घर में आज स्वार्थ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, बदले की भावना है, भय है, और इन सब के कारण हम कहेंगे नर्क जैसी स्थिति। भले विज्ञान ने बहुत विकास के साधन दिए, हमें सुख सुविधा के साधन दिए, लेकिन फिर भी मनस्थिति के कारण आज का जीवन उतना सुखी नहीं है जितना होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे घर घर में रामायण महाभारत चलती है, क्योंकि हमारे ये जो दो शास्त्र हैं वो मनुष्य की दो कमियों पर बने हुए हैं। रामायण ईर्ष्या की कहानी है। जैसे ही राजा दशरथ ने राम को राज तिलक की घोषणा की तो केकई की दासी मंथरा उसे ईर्ष्या हुई, क्यों कौशल्या का बेटा राजा हो, मेरी करानी केकई का बेटा भरत राजा होना चाहिए। और महाराज दशरथ ने रानी केकई को दो वर दिए, सही समय है कि केकई अपने वर मांग ले और भरत के लिए राज तिलक हो। उसने वही बात केकई के कानों में डाली और केकई को समझ में आई तो उसने अपने दो वर मांगे और परिणाम राम को वनवास हुआ और रामायण की पूरी कहानी बनी। महाभारत की कहानी भी हम सब जानते हैं, भाई भाई के द्वेष की कहानी है। कौरव पांडव दोनों भाई थे लेकिन कभी भी उनमें आपस में स्नेह नहीं रहा, हमेशा ही राज्य संपत्ति को लेकर के द्वेष था और उसमें चिंगारी डाली द्रौपदी के दो शब्दों ने। क्या शब्द कहे हम सब जानते हैं, क्या बोला उसने, अंधे का बेटा अंधा। तो जैसे ही दुर्योधन ने ये सुना उसे इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि मुझे अपमान का बदला लेना है, और इसीलिए उसने जुए का षड्यंत्र रचा और न सिर्फ पांडवों को जुआ खेलने के लिए मजबूर किया लेकिन धोखे से उनको जुए में हराया, अपने अपमान का बदला लिया और वनवास हुआ पांडवों को 13 साल। वापस आए तो कहा राज्य तो क्या सुई की नोक के बराबर भी जमीन मैं नहीं दूंगा, और इसी बात को लेकर के महाभारत का युद्ध हुआ और पूरे कुल का विनाश, यही कहानी है। तो आज हम देखते हैं घर घर में यही दशा है, घर घर में ईर्ष्या है, घर घर में भाई भाई में द्वेष है। और किस बात को लेकर ज्यादा है, वही संपत्ति को लेकर, क्योंकि धन को आज हम बहुत महत्व देते हैं, धन को हम शक्ति मानते हैं, धन को हम सब कुछ मानते हैं, तो उसका असर चाहे हमारे संबंधों पर आ जाए, धन संपत्ति के बंटवारे में थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। और द्रौपदी जैसे एक शब्द तो क्या कितने शब्द सारे दिन में हम बोलते हैं जिससे किसी का अपमान होता है, किसी को दुख पहुंचता है। तो कौन सी ऐसी शक्तियों की कमी है जो आज घर घर की ये हालत है, और उन गुणों और शक्तियों का हम विकास करेंगे तो वही घर घर स्वर्ग बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं चित्र में अष्ट शक्तियां, ये मुख्य हैं, और भी शक्तियां हैं लेकिन मुख्य रूप से ये अष्ट शक्तियां हैं। और उसमें एक शक्ति है सहन करने की शक्ति। आज किसी की एक छोटी बात को हम सहन नहीं कर सकते, किसी ने एक कहा तो हम दो कहेंगे, दो कहा तो चार, चार कहा तो आठ, हमारा भाव क्या होता है, जैसे को तैसा मिलना चाहिए, या ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं, फिर सोचते हैं हम क्यों सहन करें, अगर हमने सहन कर लिया तो हमारी ही गलती मानी जाएगी, और जब मैंने गलती की नहीं है तो मैं क्यों चुप रहूं, और उसके परिणाम क्या होते हैं, कई बार छोटी छोटी बातें विनाशकारी हो जाती हैं। ऐसी कई घटनाएं समाचार पत्रों में आती रहती हैं। तो एक घटना थी यहाँ के पास के गांव की कि दो बहनों में आपस में नाराजगी थी, बोलचाल बंद थी। तो एक बहन की जो बेटी माना वो अपनी मौसी के घर अपनी माँ को बिना बताए चली गई, और बाद में उसको पता चला कि मेरी बेटी जो है वो मेरी बहन के घर मेरे से बिना बताए चली गई। तो क्योंकि उसकी बोलचाल बंद थी, वो उससे बहुत नाराज थी, तो उसको अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे चली गई मुझसे बिना पूछे, माना इसको जाना नहीं था। तो जब वो घर लौटी तो उसने उसकी इतनी पिटाई की गुस्से में आकर के कि उसकी मृत्यु ही हो गई। तो बात क्या थी, देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इंसान गुस्से में अपना विवेक खो देता है, उसे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं। इसीलिए मनोविज्ञान कहता है एंगर इज टेम्परेरी इंसैनिटी, थोड़े समय का पागलपन है। जैसे पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है। और हम जो भी बोलते हैं उस समय वो हमेशा दूसरे को दुख पहुंचाता है। तो कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। कहने वाला शायद भूल जाए पर सुनने वाला नहीं भूल पाता है, और उसका असर हमारे संबंधों पर आता है। संबंध टूटने लगते हैं, संबंधों में प्रेम खत्म हो जाता है। तो क्यों क्रोध करते हैं हम, जब हम सहन नहीं कर पाते तो क्रोध में आते हैं। तो सबसे मुख्य कारण है किसी ने मेरी बात नहीं मानी, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं किया, या जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें नहीं मिला। तो यहाँ पर ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि हरेक व्यक्ति का व्यक्तित्व, विचार, भावनाएं अलग अलग हैं। कोई भी दो मनुष्य इस दुनिया में एक जैसे नहीं होते। तो जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी वैसा ही सोचता है, उसकी सोच हमसे अलग हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये भी समझने की फिर कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, अगर हमारी बात नहीं मान रहे तो क्या कारण है। तो इसको कहा जाता है आपसी समझ। सामान्यतः जिनसे हम अपेक्षा करते हैं इनको मेरी बात माननी चाहिए, वो 10 में से 9 बार हमारी बात मानते ही हैं, चाहे हमारे फैमिली के हैं, चाहे जहां हम काम करते हैं। कोई बार ऐसा होता है कभी एक बार की वो समझते हैं वो राइट है हम गलत हैं, तो हमें उनकी बात को समझना चाहिए। तो हो भी सकता है हमेशा ही हम राइट हों, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कई बार अहम आ जाता है और उस अहम के कारण हम दूसरों की सही बात को भी नहीं मानते हैं और उनको गुस्से से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कारण बनता है काम कराना। लोग काम नहीं करते हैं तो गुस्सा करना ही पड़ता है, इसमें हम अपने गुस्से को जस्टिफाई करते हैं। तो गुस्से से काम कराने से काम हो जाता है ना, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन परिणाम क्या होता है कि जिस पर हम गुस्सा करते हैं मानो वो चुप रहते हैं भय के कारण। भविष्य का भय हो सकता है ना, कि हो सकता है कि इससे हमारी हानि हो, तो चुप रहते हैं। लेकिन उनके मन की भावनाएं बदलती हैं, आपके प्रति जो स्नेह सम्मान है वो खत्म होता है और वो कभी दिल से काम नहीं करेंगे, मजबूरी से काम करेंगे तो जैसा काम चाहते हैं वैसा काम नहीं होगा। फिर मन में बदले की भावना आ जाती है कहीं ना कहीं, तो फिर वो अवसर ढूंढते हैं कि कभी हमको अवसर मिलेगा तो हम जरूर इनके लिए समस्या पैदा करेंगे। और ऐसा होता है कि कई बार उसके भविष्य परिणाम बहुत बुरे होते हैं। कोई हमसे गुस्से से काम कराए तो हमें पसंद आता है, क्या कहेंगे, हम सोचते हैं कि काम तो करना ही है लेकिन थोड़ा प्यार से तो कह सकते हैं। तो ऐसे ही दूसरों को भी पसंद होता है कि वो भी चाहते हैं कि हम काम करें लेकिन काम कराने वाला हमसे प्यार से बात करे, रिस्पेक्ट से बात करे। बच्चों पर भी गुस्सा करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो वहां भी हम बच्चों पर गुस्सा करते हैं तो भय के कारण बच्चे चुप हो जाते हैं, आपके सामने नहीं बोलते, आप जो कहते हैं वो करने लगते हैं। पर कई बार गुस्से में हम अच्छे अच्छे शब्द यानी ऐसे शब्द जो हमें नहीं कहने चाहिए वो हमारे मुंह से निकलते हैं, ये नालायक है, ये कभी सुधरने वाला नहीं है, गधा है, जो भी आता है उस समय, मतलब हमने बोला तो कई बार बच्चे उसे स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनमें उतनी परिपक्वता नहीं होती है। फिर जैसे ही वो बड़े होते हैं वो सीखते हैं इस बात को कि आप बात मनवाने के लिए गुस्सा करते हैं तो अगर मुझे भी अपनी बात मनवानी है तो गुस्सा करना है, तो आपका सामना करने लगते हैं। आप सोचते हैं हमने तो ये नहीं सिखाया, लेकिन सिखाया किसने? हमने ही सिखाया। तो ये सही तरीका नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारा कहना माने तो जो भी हम उनसे कहते हैं आप उसके पीछे कारण बताओ कि क्यों उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान समय साइंस और टेक्नोलॉजी की एज है उसमें हर बच्चा ये जानना चाहता है वैसा क्यों करे, और जब वो उसे कन्विंस होता है हम उसे कर पाते हैं तो जरूर वो करेगा, और उसके लिए हमें उसे समय देना पड़ेगा, थोड़ा हमें धैर्य रखना पड़ेगा, प्रेम से समझाना होगा, लेकिन शायद ये हमारे में नहीं होता है, हम अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाते, एक बार में ही हम बच्चों पर गुस्सा हो जाते हैं। तो कई बार कोई हमारी कमी निकालते हैं तो भी हम सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंसान को अपनी कमी सुनना नहीं अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, निंदा सुनना पसंद नहीं होता। पर कहा गया कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, तो निंदा करने वाला हमारा मित्र हो सकता है? निंदा करने वाला वैसे हमें दुश्मन लगता है, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया कि निंदा करने वाला हमारा मित्र है? क्यों कहा गया? वो हमें बताता है कि हमारी कमी क्या है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वो अपनी कमी खुद नहीं देखते, दूसरे ही उन्हें बताते हैं कि आपकी ये कमी है। तो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं उसको, पॉजिटिव लेते हैं यानी अपने आप को देखते हैं और हमें लगता है कि ये कमी मेरे अंदर है, तो फिर हम उसे दूर करते हैं, हमारी जीवन में प्रगति होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कहने वाला उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर कहता है, उतना होता नहीं है। आप अपना काम करते हैं, बहुत जिम्मेवारी से करते हैं, समय पर पूरा करते हैं, लेकिन किसी कारण से आपका काम 2-3 दिन ऊपर नीचे हो गया, तो जो आपका निंदक होगा उसे मौका मिल जाता है, वो बोलेगा तो है ही लापरवाह, ये तो हमेशा ही ऐसा करते हैं। अब आप सोचते हैं हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, ये तो अभी 1-2 दिन कुछ कारण से हुआ, लेकिन अगर 1% भी हमें लगता है कि हमारी लापरवाही हो रही है तो हम उसे दूर करेंगे तो सबकी शिकायत खत्म हो जाएगी। पर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमारे पर गलत इल्जाम लगाते हैं, सचमुच वो कमी होती नहीं है या वो गलती होती नहीं है कोई गलत फहमी की वजह से या ईर्ष्या की वजह से या कई बार नीचा दिखाना चाहते हैं तो उसकी वजह से गलत बातें आपके बारे में कहते हैं। अगर मुझे लगता है कि वो नहीं है जो कहा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर हम उसे स्वीकार ही नहीं करें, अपने मन पर नहीं लें, क्योंकि जब हम कोई भी कमी को अपने मन पर लेते हैं तभी हमें दुख होता है, जब वो कमी मेरी है ही नहीं तो हम क्यों उसे स्वीकार करें। इसलिए कहते हैं नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। एक बार ऐसे ही महात्मा बुद्ध एक स्थान पर गए, गांव में गए और वहां उनका प्रवचन हुआ। गांव में उनका एक विरोधी रहता था और वो अवसर देख रहा था, तो जैसे ही उन्होंने पूरा किया वो तुरंत उनके सामने आ गया और जो उसके मन में था वो कहने लगा, तो काफी अपमानजनक बातें थी, तो महात्मा बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब उसने पूरा किया तो वो सोचने लगा ये अब कुछ कहेंगे, अपनी सफाई देंगे जैसे होता है, तो महात्मा बुद्ध चुप बैठे रहे, शांत बैठे रहे। तो उसने फिर खुद आगे आके पूछा, आपने सुना नहीं मैंने आपको क्या कहा? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, अगर कोई किसी को कोई चीज देता है और सामने वाला अगर नहीं लेगा तो वो कहाँ रहेगी। तो वो समझ गया कि इन्होंने मेरी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो समझ गए कि ये जो कुछ भी बोल रहा है इसकी गलत फहमी है, इसे उसका ज्ञान है, उसे मालूम ही नहीं है कुछ। तो अगर ऐसी बात है तो फिर हम ऐसी बातों पर ध्यान ही ना दें। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, हम बहुत रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे, बाद में हमें पश्चाताप करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि हम थोड़ा उसको, जो हमारे मन में आवेश आता है, गुस्सा आता है, उसको हम पोस्टपोन कर दें, यानी टाल दें। हम कहेंगे अपनी बात लेकिन थोड़े समय के बाद कहेंगे, और जब हम कुछ समय के बाद उसे कहते हैं तो उसमें फर्क आ जाता है। यानी दिमाग चलता है ना, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि सामने वाले की सारी गलती नहीं है, कुछ मेरी भी गलती है, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर है भी और हमें कहना है तो फिर तब तक हमारा आवेश कम हो जाता है और हम वही बात कहते हैं, शांति से कहते हैं, थोड़ा अच्छे शब्दों में कहते हैं, तो सामने वाला उसे स्वीकार करेगा तो समाधान होगा। गुस्से में आप कहेंगे तो सामने वाला भी गुस्सा करता है, क्योंकि गुस्सा गुस्से को जन्म देता है, और अगर उनकी गलती होगी भी तो भी वो मानने वाले नहीं, और हमारी समस्याएं जीवन में बढ़ती ही हैं। एक बार ऐसे ही पति पत्नी थे, दोनों गुस्से वाले स्वभाव के, तो घर में रोज कलह होती थी, कोई भी बात होती थी तो घर में झगड़ा होता था। अब पति काम पर चले जाते थे, पत्नी घर में होती थी, तो उसको थोड़ा सा कई बार बहुत मन अशांत रहता था। तो एक बार उसकी पड़ोस की बहन आई, उसने कहा कि मैंने आज अपने घर में कथा रखी है, आप कथा में आना। कहा ठीक है, जैसे अब लोग कथा कीर्तन कराते हैं। तो गई वहां कथा में, तो देखा एक पंडित जी हैं, वो कथा कर रहे हैं। तो उसने कथा सुनी और उसके मन में विचार चला कि क्यों ना मैं पंडित जी से पूछूं, कुछ उपाय बताएंगे वो, मेरे घर में शांति कैसे हो, से बताते हैं ना, पूछते हैं। तो कथा समाप्त होने के बाद गई पंडित जी के पास कि ऐसे ऐसे मेरे घर की समस्या है, आप कुछ उपाय बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि मैं बता सकता हूं लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा बताइए। तो बोला मैं जो कहूंगा वो आप करोगी, आप ये वादा करो पहले मेरे से कि मैं जो कहूंगा वो आप करोगी। उसने कहा जरूर करूंगी, तभी पूछ रही हूं। तो जब उसने वादा किया तो उन्होंने एक पानी की बोतल मंगाई और उसे दिया, कहा देखो जब आपके पति गुस्सा करते हैं तो आप इसमें से कुछ घूंट पानी अपने मुंह में रखना, पानी मुंह में रहेगा, पानी मुंह में रहेगा तब तक जब तक वो बोलते रहते हैं, पीना नहीं है। तो वो समझ गई, लेकिन वादा करवा लिया था पंडित जी ने, तो उसने तुरंत बोतल लेके घर गई और वहां पर रोज की बात थी, कोई बात हुई तो पति ने बोलना शुरू कर दिया। अब हमेशा तो वो भी बोलती थी लेकिन आज उसने शर्त के मुताबिक पानी मुंह में रख लिया। पानी मुंह में था तो बोल नहीं सकती थी, बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। तो पति को आश्चर्य हुआ कि ये आज चुप है, चुप कैसे है। तो थोड़ा और जोर से बोला, कई बार होता है ना कि जिससे सुनने की आदत हो उसका चुप रहना भी शायद इतना सहन नहीं होता, तो बुलवाने की कोशिश की, कुछ बोले तो नहीं बोला उसने। तो पहला दिन था तो ठीक है नहीं बोला, फिर दूसरी बार हुआ तो भी ऐसे ही हुआ, उसने पानी मुंह में रखा और वो नहीं बोली, शांत रही। तो पति को लगा क्या इसने बदल लिया अपने आप को, आज भी ये चुप है शांत है। तीसरी बार ऐसा हुआ तो भी पानी मुंह में रखती थी क्योंकि वो वादा करके आई थी पंडित जी से, तो नहीं बोला उसने। तो जैसे कुछ बार हो गया तो उनको विश्वास हो गया कि इसने बदल लिया है अपने आप को, और फिर उनका अपने ऊपर ध्यान गया कि मैं भी शायद छोटी छोटी बातों में ज्यादा गुस्सा करता हूं, मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो घर में शांति हो गई है। वैसे भी दो लोग नहीं बोलते हैं तो बात नहीं बढ़ती है। तो वो इतनी खुश हुई, वो गई पंडित जी के पास। कहा, पंडित जी मैं आपका शुक्रिया करने आई हूं, आपने सचमुच जो उपाय बताया उससे मेरे घर में शांति हो गई, लेकिन वो पानी खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा, वो पानी कोई मंत्र वाला पानी मैंने नहीं दिया था, वो तो मैंने सिर्फ पीने का पानी दिया था आपको सिखाने के लिए कि जब आपके पति गुस्सा करे उस समय शांत रह जाओ, और देखो आप शांत रह गई तो आपको कितने अच्छे परिणाम मिले, सदैव ऐसे रहो आपके घर में सदा शांति रहेगी। तो कई भाई बहने कहते हैं, बहन जी कहानी तक ठीक है, कोई सचमुच ऐसा करता है तो हम चुप नहीं रह सकते, सहन करना किसको कहेंगे, कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है तो भी हम शांत रह जाएं, ऐसे ही कहेंगे ना, तो हम नहीं रह सकते। तो क्या कहेंगे आप, रह सकते नहीं रह सकते, रह सकते नहीं रह सकते, जो समझते हैं हम रह सकते हैं वो हाथ उठाइए। अच्छा, काफी भाई बहने उठा रहे हैं। तो ये तीन दिन की जो कॉन्फ्रेंस आपने की ये उसका परिणाम है, तो अपने लिए जरूर ताली बजाइए। तो इतना भी परिवर्तन हम करके जाएंगे यहाँ से तो इस सम्मेलन में आने की हमारी सफलता है। क्योंकि अगर हम यौगिक खेती के प्रयोग भी करना चाहते हैं तो पहले हमारा मन इतना शक्तिशाली शांत हो तभी हम वो कर पाएंगे। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, जब एक पेड़ फलों से लगता है तो बच्चे उसको पत्थर मारते हैं, लेकिन फिर भी उसको क्या मिलता है, क्या मिलता है पेड़ से, फल। ये प्रकृति में भी गुण है कि वो पत्थर की चोट सह करके मीठा फल देती है। तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है इंसान, क्या वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें वो शक्ति चाहिए। हम देखते हैं जितने भी महापुरुष हुए आज दुनिया में, उन सबके जीवन की ये विशेषता थी कि उनके साथ किसी ने कैसा भी किया उन्होंने फिर भी दया करुणा प्रेम क्षमा का व्यवहार हर एक इंसान के साथ किया, और यही कारण है कि वो समाज में इतने बड़े बड़े परिवर्तन ला सके। आज अगर हम महात्मा गांधी को देखें, महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट के जीवन को देखें, जो भी महापुरुष हम कहते हैं, आज ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ाया तो भी उन्होंने क्या कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो उनके मन में क्षमा भाव था। आज जितने भी संसार के गिरजाघर हैं वहां ईसा मसीह के लिए प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, क्योंकि वो ऐसे गुण थे उनके अंदर जिसके कारण उनको भगवान का दर्जा मिला। तो ये क्षमा का गुण, प्रेम का गुण, मानवता का जो गुण है वो मनुष्य को इतना ऊंच और महान बनाता है। हमारे देश में भी ऐसे बहुत हुए। एक संत एकनाथ के जीवन की घटना है। वो महाराष्ट्र के संत थे और हरिद्वार में आए गंगा स्नान के लिए। तो जब वो गंगा स्नान करके लौट रहे थे तो रास्ते में एक पठान था, उसने सुना था उनके बारे में कि इनको गुस्सा नहीं आता है, प्रसिद्ध थे वो उसके बारे में। तो उसने सोचा कि अभी पता चल जाएगा कि इनको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, तो उसने जानबूझ करके छज्जे पे खड़े होकर उनके ऊपर थूका। तो जैसे ही थूक पड़ी उनके ऊपर तो उन्होंने देखा भी नहीं किसने थूका, वो गए दोबारा स्नान करके आ गए। और जब वो फिर गुजर रहे थे उस गली से तो फिर से उसने थूक दिया, वो फिर से स्नान करने चले गए। ऐसे कितनी बार उसने थूका और वो चुपचाप गए स्नान करके वापस आ गए। और फिर उसको लगा कि सचमुच जो कहा गया वो सही ही है, लेकिन उसने सोचा फिर भी मैं कोशिश करता हूं, तो नीचे उतर के आया और उनके सामने खड़ा हो गया, बोला आपके ऊपर जो थूकने वाला हूं मैं हूं, आपको मुझे कुछ कहना है। उनको लगा कि शायद उन्होंने देखा ही नहीं, अब इनको सामने देखूंगा तो कुछ कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, अब तुम सामने आ ही गए हो तो मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। मैं महाराष्ट्र से इतना दूर से यहाँ गंगा नदी में स्नान करने आया, तुम्हारे कारण आज मैंने इतनी बार स्नान किया, नहीं तो मैं एक ही बार स्नान करके चला जाता। अब देखिए, सोच ही अलग है। कोई हमारे ऊपर थूके तो हम क्या करेंगे, अच्छे से समझा देंगे थूकने का मतलब क्या होता है ना। लेकिन जब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है, जो कहा क्षमा दया प्रेम के गुण इंसान के अंदर होते हैं, तब हम दूसरों को इस नजर से नहीं देखते। हमारा देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि जैसे कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम किस तरह से किस घटना को सोचते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो योग अभ्यास जब हम प्रतिदिन करते हैं तो इन गुणों का विकास होता है, मानवता के प्रति प्रेम, क्योंकि परमात्मा प्रेम का सागर है, उस प्रेम का हम अनुभव करते हैं, वो शांति का सागर है, वो शांति की शक्ति हमारे अंदर आती है, वो खुद करुणा दया का सागर है। तो उन गुणों से हम भी दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं। और जहाँ प्रेम होता है, आप खुद देखें अपने जीवन में, जिसके प्रति प्रेम होता है ना, उसकी गलती हमें गलती ही नहीं लगती है, उसको हम बहुत आसानी से क्षमा कर देते हैं। और जिसके प्रति प्रेम नहीं होता है, उसकी छोटी बात भी हमें बड़ी लगती है ना। तो ये अंतर हम देखते ही हैं। और राजयोग अभ्यास से हमें जो दूसरी शक्ति प्राप्त होती है वो है समाने की शक्ति। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख, इन स्थितियों से हमारा जीवन गुजरता है। कभी हम सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हम सफल होते हैं, कभी हम असफल होते हैं, कभी हमें लाभ होता है, कभी हमें हानि भी होती है। लेकिन एक योगी हर स्थिति में समान रहता है, उसको स्थिर चित्त कहते हैं। समान रहना माना वो दुख में बहुत दुखी नहीं होता, सफलता में बहुत निराश नहीं होता, और सुख में बहुत गर्व और अहंकार में नहीं आ जाता। क्योंकि पता है कि हर स्थिति परिवर्तनशील है, कोई भी समय सदा नहीं रहता है। तो आप देख रहे हैं सागर, जैसे सागर में लहरें उठती हैं सतह पर, बहुत हलचल होती है सागर की सतह पर, लेकिन भीतर में सागर बिल्कुल शांत होता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी परिस्थितियों रूपी लहरें उठती रहती हैं, लेकिन एक योगी अपने भीतर से वो स्थिर होता है, शांत होता है, संतुलित होता है। ये योग की शक्ति है, सिद्धि है जिसे हम कहेंगे। सागर में अनेक नदियां समाती हैं, कई दिशाओं से नदियां आती हैं, बहुत कचरा भी, क्योंकि सबसे प्रदूषित जल होता है जब नदी सागर तक आती है, लेकिन वो सब सागर में समा जाता है। हल्की वस्तु होती है वो सागर की लहरें उठाकर बाहर फेंक देती हैं, भारी वस्तु होती है उसे सागर तले में ले लेता है, लेकिन सागर की सतह हमेशा स्वच्छ रहती है। ऐसे ही योगी का जीवन होता है कि इस संसार में हम अच्छी बुरी बातें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम सब कुछ समाते नहीं, माना ग्रहण नहीं करते। हम वही अपने जीवन में धारण करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसके लिए कबीर दास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, सार सार को गही दिए थोथा दे उड़ाए। यानी एक सज्जन व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, जैसे अनाज साफ करने वाला सूप, वो कचरे को फेंक देता है और उपयोगी अनाज को रख लेता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन, कि संसार में कचरे जैसी जो बातें हैं उन पर हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो हमारे लिए सार्थक है, जो हमारे लिए हमें प्रगति कराने वाला है, उसे हम जीवन में ग्रहण करें। और समाने की शक्ति का दूसरा स्वरूप है, मानो कोई हमारे समीप मित्र हैं, उनको कोई कष्ट है, समस्या है, वो हमें अपने दिल की बात कहते हैं, और कहते हैं कि आप इसे किसे नहीं कहना, क्योंकि ये मेरी पर्सनल बात है, मुझे आपसे सहयोग चाहिए इसलिए मैंने आपको बताया। हम उनको विश्वास दिलाते हैं हम किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा कोई अपना होता है उसे हम वो सारी बात कहते हैं और फिर वही कहते हैं कि आप किसी को मत कहना। और फिर आगे आगे वो बात फैलती जाती है, हरेक यही कहता है आप किसी को मत कहना। और होता क्या है कि भाव भी बदलता है, बात भी बदलती है, हरेक कहने वाला उसे अपने ढंग से समझता है और अपने ढंग से दूसरे को कहता है, तो कई बार अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। और घूम फिर करके जब वो बात फिर से उन तक पहुंचती है तो सामने वाले को कैसा लगेगा कि मैंने इतना भरोसा किया, विश्वास किया, मेरे साथ धोखा हुआ, तो वो बहुत दुख पहुंचता है। और सालों की दोस्ती भी होगी तो या संबंध भी होगा तो वो टूट सकता है, उसमें कड़वाहट आ जाती है। ऐसे ही एक बार एक ब्राह्मण थे, उन्हें गांव जाना था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे लौटने में देर हो जाएगी, मेरे लिए टिफिन बना के दे देना। उसने दे दिया। अब वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे खाने के लिए बैठे तो भोजन लगाया तो ऊपर एक पक्षी बैठा था डाली पर, उसने उसी समय बीट कर दी, खाने में बीट पड़ गई। अब वो तो ब्राह्मण थे, उनके लिए शुद्धि का महत्व था, तो उन्होंने भोजन छोड़ दिया। फिर मन भी बदल गया कि अभी गांव नहीं जाते हैं, फिर देखेंगे। वापस आ गए घर तो पत्नी ने पूछा, आप तो गांव गए थे, वापस कैसे आ गए इतना जल्दी? तो बताना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको अपनी पत्नी का स्वभाव मालूम था कि अगर इसको बताया तो सारे गांव को पता होगा। तो उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन उसने थोड़ा जोर डाला, बार बार पूछा, तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, जब मैं खाने बैठा तो खाने में पक्षी की बीज गिर गई, लेकिन तू ये बात किसी को कहना मत, थोड़ा जोर दे करके उन्होंने कहा। तो उसने कहा नहीं कहूंगी, लेकिन स्वभाव होता है व्यक्ति का। तो वो गई कुएं पर पानी भरने, अगले दिन उसकी चार साथी औरतें थी, वो भूल गई, बातों बातों में उसने सब सुना दिया कैसे ऐसे हुआ, पंडित जी गए और वापस आए, क्यों वापस आए। तो अब सब एक जैसा नहीं सुनते हैं, कुछ लोग आधा आधा सुनते हैं। तो उसमें से एक ने क्या सुना, पंडित जी के खाने में पक्षी की बीट की जगह पक्षी गिर गया। फिर उसने चार लोगों से बात की तो उसमें से एक ने क्या सुना, पंडित जी के खाने में नहीं मुंह में पक्षी चला गया। फिर उसने चार लोगों से बात की तो उसमें से एक ने सुना, पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। तो अब ये बात पंचायत तक पहुंच गई कि हमारे गांव में ऐसे पंडित जी हैं, ऐसे चमत्कार करते हैं, हमने तो कभी देखा नहीं, उनको पंचायत में बुलाया जाना चाहिए। तो उनको बुलाया गया, पता चला कि पक्षी निकाल कर दिखाने के लिए बुलाया गया है। तो उनको लगा किसने कहा पक्षी निकालना, कहां से ये बात आ गई। फिर थोड़ा उन्होंने दिमाग चलाया तो समझ में आया कि ये सारी पत्नी की करामात है, पर अब आ गए हैं पंचायत में तो जवाब देना है। तो जब उनको कहा गया पक्षी निकाल करके दिखाओ, तो उन्होंने कहा जरूर दिखा सकता हूं, लेकिन जो पक्षी निकलते हुए देखेगा वो भी पक्षी बन जाएगा। तो सारे उठ के चले गए। तो सुनाने का भाव क्या है, बात क्या थी और जब वो बात फैली तो क्या हो गई, कोई सिर पैर नहीं, अर्थ के अनर्थ हो गए ना। तो इसीलिए कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने दो कान क्यों दिए हैं हमें, एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो, लेकिन नहीं निकलता है क्योंकि दोनों कानों के बीच में दिमाग आ जाता है, और जब दिमाग आता है तो हम दिमाग चलाना शुरू करते हैं, अच्छा ऐसे हुआ, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे हैं, हमने तो सोचा ही नहीं था, हाँ ये ऐसे भी होंगे, मतलब हम अपने तरह से उसका विश्लेषण करने लगते हैं और फिर वो बातें हम किसी के बारे में कहते हैं। तो समाने की शक्ति अर्थात किसी की भी कमी है, जीवन में हर कोई व्यक्ति परफेक्ट तो नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता, हरेक के अंदर कोई ना कोई कमियां होती हैं, गुण भी होते हैं, तो हम उनके गुणों को ग्रहण करें और उनकी जो भी कमियां हैं उन्हें हमें समा देना है, यानी उसके बारे में ज्यादा हमें चर्चा नहीं करनी है। और अगर हमें लगता है ये किसी के राज की बात है, नहीं कहनी चाहिए, तो कभी भी हम मुख से ना कहें। पर अगर कहना ही है तो फिर सही व्यक्ति को सही समय पर सही भाव से, यानी शुभ भाव से, सही स्थान पर हम वो बात कहें। तो इसे हम कहते हैं गंभीरता का गुण या समाने की शक्ति, जिससे हम अपने जीवन में सफल होते हैं। नहीं तो संबंधों में कहीं ना कहीं हमारे वो कड़वाहट घुली रहती है, क्योंकि हम ऐसी बातें एक दो के बारे में कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। तो राजयोग अभ्यास से हमें वो शक्ति आती है, क्योंकि हमारा हृदय विशाल होता है। जैसे बताया सागर विशाल है, इसलिए सब कुछ समा जाता है। तो जब हृदय विशाल होता है तो दूसरों की छोटी मोटी बातें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं और उन पर हम इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। तीसरी और चौथी शक्ति है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं। हम कभी कभी दुविधा में होते हैं। दुविधा में होना माना करूं कि नहीं करूं, ये सही है कि नहीं है, ये उचित है या अनुचित है, क्या करना चाहिए। तो फिर हमें परखना भी होता है और निर्णय भी लेना होता है। और अगर हम सही निर्णय ले लेते हैं तो हम सफल होते हैं, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ता है, काश उस समय ऐसे नहीं ऐसे किया होता तो ये नहीं होता। तो आप देख रहे हैं चित्र में एक जौहरी को दिखाया है। जौहरी को आभूषणों की परख होती है, उसे पता है खरा सोना और नकली सोना क्या है, या नकली आभूषण क्या है, या असली हीरा नकली हीरा उसकी पहचान क्या है, या असली रतन नकली रतन को हम कैसे परखें, और इस आधार पर ही वो अपने व्यापार में सफल रहता है। ऐसे ही एक डॉक्टर है, उसे बीमारी का ज्ञान है, इसलिए वो मरीज को देखते ही समझ जाता है इसे क्या बीमारी है और उस आधार पर ही उसका इलाज करता है। तो वो परख है, ज्ञान के आधार पर परख है। ऐसे ही एक जज को अपराधी के अपराध का ज्ञान होता है कि कितना संगीन अपराध है और उसके अनुसार उसको क्या सजा होनी चाहिए, क्या न्याय होना चाहिए, उस आधार पर वो अपने पेशे में सफल होते हैं। तो कहने का भाव कि जिस भी क्षेत्र में हम हैं उससे संबंधित संपूर्ण ज्ञान है तो हम सही परख पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं और हम सफल होते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो आध्यात्मिक ज्ञान से हमारी बुद्धि स्वच्छ और स्पष्ट होती है, दिव्य बुद्धि होती है जिसे हम कहते हैं। और जो स्वच्छ होता है, जैसे हम कहेंगे साफ पानी में हम तले तक भी देख सकते हैं, तले तक भी वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। तो ऐसे ही बुद्धि स्वच्छ होने पर हमें व्यक्ति के भाव भावनाएं भी समझ में आती हैं, उनको भी हम परख सकते हैं। और ये जब सूक्ष्म स्तर पर हमारी परखने की शक्ति होती है, तो कहते हैं इंसान को पहचानना। तो फिर जिनके भी संपर्क में हम आ रहे हैं उसके अनुसार उनको समझकर फिर उनके प्रति हम निर्णय ले पाते हैं। तो मानो किसी से हमें सावधान रहना है तो हम उनसे सावधान रह सकते हैं, या निश्चित रूप से अगर हमें लगता है कि ये सही है और इनके लिए हम ये निर्णय ले सकते हैं, इनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उस अनुसार फिर जीवन में हमें सफलता मिलती है। तो क्योंकि आज मनुष्य अंदर कुछ बाहर कुछ होते हैं, जो बाहर में आपसे वो व्यवहार करते हैं जरूरी नहीं है कि भीतर में भी वो आपके प्रति वैसी ही भावनाएं रखते हों। तो यदि भावनाओं को भी परखने की शक्ति हमारे अंदर है, जो हम योग से अपनी उसकी विकसित कर पाते हैं या वृद्धि कर पाते हैं, तो हम निश्चित रूप से सही परखते हैं और सही निर्णय लेते हैं। निर्णय करने की शक्ति को तराजू से दिखाया है। से तराजू के तीन भाग होते हैं, कांटा, डंडा और पलड़ा। सही तौल के लिए कांटा सीधा होना चाहिए, डंडा संतुलित और पलड़े बराबर होने चाहिए। तो एक योगी के जीवन में ये स्थिति सहज होती है कि मन एकाग्र होता है, शांत संतुलित होता है। जब हम योग करते हैं तो हमारे लिए निर्णय लेना सहज होता है, लेकिन अगर हमारी बुद्धि अशांत है, हम दुविधा में हैं, हम टेंशन में हैं, बहुत संकल्पों में हम उलझे हुए हैं, तो हमारे लिए निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए योग से हमें सहयोग मिलता है, साथ साथ में परमात्मा से भी हमें अंतः प्रेरणाएं मिलती हैं, जिसे हम इंट्यूशंस कहते हैं, तो उससे भी हमारा निर्णय सही होता है। पांचवी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है सामना करने की शक्ति। जीवन में समस्याएं आती रहती हैं और उन समस्याओं का हमें सामना करना ही पड़ता है। तो आप देख रहे हैं चित्र में कि मानो किसी की मृत्यु होती है, खासकर कोई प्रियजन है हमारा और उसकी अनायास मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु, कोई दुर्घटना में मृत्यु, तो कई लोगों के लिए ये इतना ज्यादा दुखदायी घटना होती है कि जैसे उसके मृत्यु के साथ साथ उनका जीवन भी समाप्त हो गया और वो दिनों तक महीनों तक सामान्य नहीं हो पाते, और यहां तक कि उनको उसके लिए कई बार दवाइयां खानी पड़ती हैं, जैसे नींद नहीं आना, टेंशन में, स्ट्रेस में रहना, उस बात को लेकर के बहुत दुखी रहना, रोते रहना, ये हालत होती है उनके जीवन की, इसे कई लोग मिलते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान हमें होता है तो हमें ये समझ है कि ये तो शरीर की मृत्यु है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। उस आत्मा का जब तक हमारे साथ कर्म संबंध था तब तक वो हमारे साथ थी, क्योंकि जो भी हमारे समीप के संबंध होते हैं वो लेन देन के संबंध होते हैं, तो निश्चित रूप से जब तक उसका हमारे साथ लेन देन था तब तक वो आत्मा हमारे साथ थी। अब वो समाप्त हो गया तो जहां आगे जाकर के उसे अपना कर्म करना है वो आत्मा वहां जाएगी। तो उनके भविष्य जीवन के लिए, क्योंकि हमें पता है जो चला गया वो लौट कर आने वाला तो नहीं है, लेकिन जो भी जहां भी भविष्य में वो जाने वाली है वो आत्मा, उसके लिए हम शुभ भावना रखते हैं, उन्हें शांति का दान देते हैं, जो भी हम करते हैं बहुत सारे कर्तव्य करते हैं उनके प्रति, ताकि हमारी शुभ भावनाएं उन तक पहुंचे। लेकिन अगर हम दुखी रहते हैं तो वो दुख भी उस आत्मा तक पहुंचता है, तो कई बार फिर वो आत्माएं अपना संदेश देते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, एक परिवार में जवान बेटा था, इकलौता बेटा, और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं कि माता पिता उस बात को लेकर कितने दुखी, कोई दिन ऐसा नहीं होता था उसके बाद जो अपने बेटे की याद में रोते नहीं, महीनों हो गए। तो एक दिन वो बेटा अपने पिता के सपने में आया और उसने देखा कि वो बेटा फरिश्तों की सभा में है और सभी के हाथ में एक कैंडल है वो जल रही है, लेकिन बेटे के हाथ में जो कैंडल है वो बुझी हुई है। तो उसने पूछा, बेटा आपकी कैंडल क्यों बुझी हुई है? तो उसने कहा कि पिताजी, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरी कैंडल जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप रोज रोते हैं, आपके आंसू इस कैंडल पर पड़ते हैं और ये बुझ जाती है, तो आप प्लीज रो नहीं। तब उनको समझ में आया कि मेरे रोने से मेरे बेटे के भविष्य पर असर पड़ रहा है, और फिर उस दिन के बाद से उन्होंने रोना बंद किया। तो कहने का भाव यही है कि अगर हम बहुत दुखी होते हैं उन आत्माओं के लिए तो वो उन तक भी पहुंचता है, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि जो हमारे प्रिय हैं उनका भविष्य कुछ इस प्रकार से हो। जो भी हमारे कर्तव्य हैं वो पालन करें, और मानो उनको हम याद भी करते हैं तो उनको दुआएं दें, दुखी ना हो लेकिन उनके भविष्य जीवन के लिए उनको हम दुआएं दें। और भी कई बातें समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती रहती हैं, मानो व्यापार में हानि हो गई, कभी ऐसा अचानक शरीर में रोग हो गया जिसका हमें ज्ञान नहीं था, या हमारे परिवार में ही किसी को ऐसी असाध्य बीमारी हो गई, या कहीं अनहोनी हो जाती है, अनहोनी माना प्राकृतिक आपदा आई, या फिर कहीं चोरी हो गई, आग लग गई, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं अनायास ही, जीवन अच्छी चल रही होती है, अचानक ही कोई ऐसी बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक ज्ञानी व्यक्ति कर्म की गति को समझता है कि जो भी परिणाम हमारे सामने आते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई परिणाम जीवन में नहीं आता, जो भी फल होते हैं वो बिना कारण के नहीं होते, कई बार उनका संबंध हमारे पूर्व जन्मों से भी हो सकता है। तो फिर हम जब उसको समझते हैं, उसके राज को समझते हैं, तो हमारा धैर्य बना रहता है कि हमारे ही कर्मों के परिणाम स्वरूप ये घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, तो भविष्य में हम अपने कर्मों के प्रति सावधान रहते हैं, या जो भी हमें अपने कर्मों में सुधार लाना है वो हम सुधार करते हैं या उसका समाधान करते हैं, ऐसा हम कहेंगे। और जैसे कहा कि हर बात के दो पहलू होते हैं, जैसे गीता में कहा जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तो बुरी घटनाओं में भी क्या अच्छा हो सकता है? अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ पढ़ा कर जाती हैं, बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, जिसको हम कहते हैं जीवन की पाठशाला, जो हम कोई विद्यालय में नहीं सीखते हैं, लेकिन जब जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तब हम उनसे जो सीखते हैं, और वो अनुभव हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो एक लाभ तो ये होता है, और कई बार हमें भविष्य में ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, तो वो परिवर्तन का कारण वो समस्या बनती है जिसको हमें लगता है कि ये मेरे जीवन में बहुत बुरी समस्या थी। और जब हम राजयोगी हैं तो परमात्मा को हम साथ अनुभव करते हैं, भगवान जो सर्वसमर्थ है, जब वो हमारे साथ है तो फिर हमारे लिए सामना करना मुश्किल नहीं होता। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं किसी के साथ उसके बॉडीगार्ड होते हैं, जिनको भी रक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड मिले होते हैं, वो निर्भय होते हैं, उनको पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या बच्चे माँ बाप के साथ होते हैं तो निश्चिंत होते हैं, क्योंकि माँ बाप जिम्मेवार हैं तो बच्चे निश्चिंत होते हैं। तो परमात्मा जो हमारा परम रक्षक है, अगर वो हमारे साथ है तो कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में है वो हमारे लिए बहुत छोटी होती है, खेल के समान होती है। महाभारत का ही एक प्रसंग आता है कि जब अभिमन्यु को धोखे से महाभारत में मार दिया गया चक्रव्यूह में, अर्जुन को पता चला तो बहुत क्रोध में आया, उसने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं खुद को जिंदा सिद्धा में जला दूंगा। अब कृष्ण ने सुना तो समझ गए कि इतना आसान तो नहीं है, और अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, और अगर सचमुच इसने युद्ध नहीं जीता ये तो अपने को जला देगा, तो बड़ी ही मतलब मुश्किल वाली स्थिति थी। तो उस रात को शिविर में सब सो रहे थे लेकिन कृष्ण जाग रहे थे, क्योंकि वो अर्जुन के सारथी थे, तो वो युद्ध की योजना बना रहे थे कि कल का युद्ध कैसे रहे जो अर्जुन जीते। लेकिन उनकी नजर अर्जुन पर गई तो देखा वो सो रहा है, जैसे सब सो रहे ऐसे वो भी सो रहा है। तो उन्होंने उठाया अर्जुन को, अर्जुन तुम सो रहे हो, क्या प्रतिज्ञा की तुमने, याद नहीं तुमको? तो उसने कहा माधव मुझे याद है, लेकिन मुझे ये भी पता है आप मेरे साथ हो और आप मेरी चिंता कर रहे हो, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? तो भगवान साथ है तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? तो कहने का भाव, जब समर्थ का साथ हमें होता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चिंताएं उनके ऊपर हम सौंप देते हैं, तो ऐसे हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ती है। फिर सहयोग की शक्ति, एक राजयोगी सभी का सहयोगी होता है, क्योंकि हमें ज्ञान है कि हम सब आत्माएं हैं और हम सब आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर आए हैं। हम एक ही परम पिता की संतान है, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति, भाषा, देश के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये विश्व ही एक परिवार है। हमारी संस्कृति में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, तो हम सही अर्थों में समझ पाते हैं कि ये पूरी वसुधा एक परिवार कैसे है, क्योंकि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। तो फिर ये चार छह लोगों का परिवार मेरा परिवार है, इनके लिए ही मेरी सहयोग की भावना है, नहीं, पूरे विश्व की आत्माएं ही हमारा परिवार है। और किसी को भी अगर हमारे सहयोग की जरूरत है तो हम उनको सहयोग देते हैं, अगर हम दे सकते हैं। और जहां सहयोग होता है वहां एक और एक दो नहीं, एक और एक ग्यारह होते हैं। तो सहयोग से बड़े बड़े कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं, या बड़े बड़े कार्य भी सफल हो जाते हैं। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि भागवत में ये दिखाते हैं, जब गोकुल पर बाढ़ का संकट था तो श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा की। तो केवल कृष्ण की उंगली नहीं थी, लेकिन उनके जो साथी गोप गोपियां थे उनकी भी उंगली थी। और ये कोई मिट्टी का पर्वत उठाने वाली बात नहीं है, ये तो परमात्मा के कर्तव्य का यादगार है कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, जो कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जब भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, तो फिर वो केवल अकेले यानी खुद कोई जादू मंत्र की छड़ी घुमाकर इस संसार को बदल दें, भगवान ऐसा नहीं करता है, लेकिन उनके साथ साथ अनेक आत्माओं का तन मन धन का सहयोग होता है। नहीं तो हम समझ सकते हैं इतना बड़ा कलयुग, इतनी बड़ी दुनिया बदलकर क्या सतयुगी सृष्टि आ सकती है संसार में। तो हमें संदेह हो सकता है कि क्या कुछ लोगों के द्वारा ये विश्व परिवर्तन होकर इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो हो सकता है। जैसे कहते हैं कि हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, अगर इंसान हिम्मत रखता है तो भगवान भी उसकी मदद के लिए हाजिर होते हैं। तो जहां हिम्मत है वहां अनेकों का सहयोग हाजिर हो जाता है। जैसे हम सुनते हैं महात्मा गांधी ने जब आजादी का संकल्प किया तब वो अकेले थे, लेकिन उन्होंने वो दृढ़ता रखी, हिम्मत रखी, तो धीरे धीरे पूरा भारत उनके साथ जुड़ा और भारत आजाद हुआ। आज हम ब्रह्मा बाबा के कार्य को देखते हैं, परमपिता परमात्मा शिव ने जब उन्हें अपना माध्यम बनाया तब वो अकेले थे, कुछ ही लोग थे, थोड़े से लोग थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी तो आज ये ईश्वरीय कार्य कितना विशाल रूप ले चुका है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये परिवर्तन अवश्य होगा, क्योंकि ये संसार तो मनुष्यों से बना है ना, तो मनुष्यों का परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन है। तो इसीलिए सहयोग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, जहां सभी का सहयोग हाजिर होता है वहां असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। फिर सातवीं शक्ति है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। आप देख रहे हैं चित्र में कछुआ है, कछुआ प्रकृति में एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर पर एक कठोर खोल होता है और वो उसमें अपने अंगों को समेटे रहता है, जब उसे खाना चलना होता है तो अपने अंग बाहर निकालता है। ऐसे ही योगी का जीवन होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम आत्मा हैं और ये शरीर रूपी कर्मेंद्रियां हमें कर्म करने के लिए मिली हैं। तो जब हमें कर्म करना है तो हम इन्हें कार्य में लगाते हैं, मन बुद्धि को भी कार्य में एकाग्र करके उसे कुशलता से हम संपन्न करते हैं, लेकिन जब कार्य पूरा हो गया तो अपनी कर्मेंद्रियों को समेटकर हम मन को आत्मा में स्थित कर सकते हैं। आत्मा में स्थित करना माना आत्मिक गुणों का अनुभव करना, आत्मिक शांति, आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद का अनुभव करना। तो जब चाहे हम शामिल हो जाएं, जब चाहे हम न्यारे हो जाएं, ये कला योगी में होती है। यहां तक कि हम इस संसार से भी मन को न्यारा कर सकते हैं और परम धाम में अपने मन को परमात्मा की याद में स्थित कर सकते हैं। और जब मन परमात्मा की याद में होता है तो मन की स्थिति बहुत ऊंची होती है। हम संसार में देखते हैं कि एरोप्लेन आसमान में उड़ता है, ऊंचा उड़ता है, तो उसके लिए नदी, पहाड़, नीचे का ट्रैफिक कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए वो कोई बाधा ही नहीं है, क्योंकि वो उन बाधाओं से इतना ऊपर उड़ रहा है। तो यही मन की स्थिति के साथ होता है। जब हमारे मन की स्थिति ऊंची होती है तो इस संसार की परिस्थितियां, समस्याएं, वो हमारे लिए समस्याएं रहती ही नहीं। तो ये योगी के जीवन की उपलब्धि है, कमल फूल समान जीवन, कि जैसे कमल कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ से न्यारा होता है। और आठवीं शक्ति है समेटने की शक्ति। आपने चित्र में देखा जैसे यात्रा का सामान, कि जब हम कोई यात्रा पर जाते हैं तो हम उतना ही आवश्यक सामान लेते हैं जितना हमें चाहिए, हम अपना घर समेट करके नहीं ले जाते हैं। तो ये जीवन भी एक यात्रा है, और इस जीवन यात्रा में भी हमें पता है कि अगर संसार में जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन इस जीवन यात्रा में हम ये भूले रहते हैं, जीवन भर हम ये भूले रहते हैं कि अगर जन्म लिया है तो मृत्यु भी होनी। हम समझते हैं जीवन सदा ही है, और इसीलिए मोह माया विषयों में मन लगा रहता है। तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सोचते हैं मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा तो मेरा है ही, आपका भी कैसे मेरा हो जाए, इस कोशिश में लगे रहते हैं। तो हम उनको कहेंगे स्वार्थी हैं। आज संसार में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इंसान अपने बारे में ही ज्यादा सोचता है, दूसरों के बारे में इतना नहीं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, आपका नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो मेरा है उस पर तो मेरा ही अधिकार है, वो हम आपको नहीं देंगे। ये मानवीय स्वभाव, एक साधारण इंसान का स्वभाव ऐसा होता है। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग होते हैं न कुछ तेरा न कुछ मेरा, न तो हम कुछ इस दुनिया में लेकर के आए हैं और ना ही कुछ हम अपने साथ वापस लेकर के जाने वाले हैं। वो हैं आध्यात्मिक सोच, यानी आध्यात्मिक वृत्ति जिनकी है। और सचमुच ऐसा ही है कि कोई स्थूल संपत्ति धन हम नहीं लेकर के आते हैं। इसलिए कहते हैं खाली हाथ आए हैं और जाएंगे भी। कितना भी मिलियनर क्यों ना हो, कितने रुपए ले जा सकता है अपने साथ? एक रुपया भी ले जा सकता है? नहीं ले जा सकते ना। इसलिए कहते हैं कि कफन में जेब और कब्र में अलमारी नहीं होती है। ऐसे ही सिकंदर महान की घटना है कि उसने कहा मेरे हाथ कोफिन से बाहर निकाल देना। तो उसने कहा आप ऐसा क्यों चाहते हैं? उसके वजीर ने पूछा तो उसने कहा मैं अलेक्जेंडर दी ग्रेट, विश्व विजेता कहलाता हूं, लेकिन आज जब मैं मर रहा हूं तो क्या ले जा रहा हूं अपने साथ? मेरे हाथ खाली हैं, तो दुनिया को पता चले कि इतना बड़ा सिकंदर महान भी खाली हाथ गया। लेकिन फिर भी आत्मा अपने साथ कुछ ले जाती है, और वो क्या ले जाती है वो हम एक कहानी से समझेंगे। कि एक बार एक व्यक्ति के तीन दोस्त थे। एक बहुत करीबी दोस्त जो दिन रात उसके साथ रहता था, उठता बैठता खाता पीता था। दूसरा थोड़ा शहर में रहता था तो कभी दिनों में मिलना होता था। तीसरा दूसरे शहर में रहता था तो कभी सालों में मिलना होता था, लेकिन दोस्ती थी। अब इसको किसी ने गलत मुकदमे में फंसा दिया, माना उसने हत्या की नहीं थी लेकिन हत्या का आरोप उस पर आ गया, और सारे गवाहों से भी सिद्ध हो गया कि इसी ने हत्या की है, तो उसे सजा भी हो गई, उम्र कैद हो गई उसको। तो उसने जज को अपील की कि मैंने हत्या नहीं की, मुझे क्यों सजा दी जा रही है। तो जज ने कहा तुम गवाह पेश करो, अगर तुम अपने पक्ष में गवाह लेकर के आओगे तो तुम्हारी सजा बदल सकती है। उसने सोचा मेरे दोस्त हैं, वो तो मुझे जानते हैं, मेरी गवाही देंगे। तो उसने सबसे पहले अपने दोस्त को, जो उसके साथ अधिक समय बिताता था, उसको कहा दोस्त तुमको मेरी गवाही देनी है। तो उसने सीधा ही ना कर दिया, उसने कहा कोर्ट कचहरी से तो मुझे बहुत डर लगता है, तुम ये बात मुझे मत कहो, कुछ और सहयोग चाहिए तो बता सकते हो। उसने कहा नहीं, गवाही देनी है, गवाही नहीं दोगे तो मेरी उम्र कैद हो गई है, मुझे वो सजा भोगनी पड़ेगी। पर वो नहीं माना तो उसको बहुत निराशा हुई कि मेरा वो दोस्त जिस पर मुझे बहुत भरोसा था उसने ही ना कर दिया। फिर उसने दूसरे दोस्त को कहा, तो उसने कहा दोस्त मैं अदालत तक आ जाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाऊंगा। लेकिन वो कटघरे में खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं है मेरी। उसने कहा नहीं, बोलना ही है, गवाही ही देनी है। वो भी तैयार नहीं हुआ। अब उसे तीसरे से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो तो कभी सालों में कभी बातचीत होती थी, तो उसने सोचा वो क्या मदद करेगा। फिर भी सोचा पूछ लेते हैं। फिर पूछा तो उसने कहा कि दोस्त मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा। और वो आया और उसने उसकी गवाही दी। तो हमारे भी तीन दोस्त हैं, आत्मा के भी तीन दोस्त हैं। पहला दोस्त क्या है? ये शरीर। उम्र भर शरीर और आत्मा का साथ है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तब शरीर ही छूट जाता है। दूसरे दोस्त हैं हमारे मित्र संबंधी। वो कहाँ तक आते हैं? अदालत तक, यानी शमशान घाट तक हमें अंतिम विदाई देने के लिए आ जाते हैं। एक तीसरा दोस्त है जो भगवान के दरबार में हमारी सच्ची गवाही देता है। वो कौन है? जो दूर का दोस्त है, जिस पर हमारा ज्यादा ध्यान नहीं होता। हमारा सबसे करीबी दोस्त तो हमारा शरीर है। ज्यादा तो हमें शरीर निर्वाह के लिए ही बहुत समय देना पड़ता है। फिर मित्र संबंधियों की भी हम चिंता करते हैं, उनके लिए भी हम बहुत कुछ करते हैं, उन्हें मेरा समझते हैं। लेकिन जिस दोस्त पर हमारा ध्यान नहीं होता वही हमारे साथ चलता है। कौन सा है? कर्म। वो है हमारे कर्म, जो भगवान के दरबार में हमारी सच्ची गवाही देते हैं। तो एक राजयोगी इस राज को जानता है कि कर्मों की कमाई ही हमारी सच्ची कमाई है। और कौन सी? श्रेष्ठ कर्मों की कमाई। जैसे हम ट्रेवल करते हैं ना, तो हम कोई इल्लीगल सामान नहीं ले जा सकते। अगर आप इल्लीगल सामान ले जाएंगे और पकड़े गए तो सजा होगी या जुर्माना होगा, काफी बड़ा जुर्माना होगा। और विदेश में गए तो आपको कस्टम से पास होना ही पड़ता है। तो भगवान के दरबार में भी हम पाप कर्मों को लेकर के नहीं जा सकते, वो इल्लीगल है, उसका हिसाब किताब यहाँ ही पूरा करना पड़ता है। हमारे साथ जो पूंजी जाती है वो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी हमारे साथ जाती है, जो हमारी डेस्टिनी, हमारी प्रारब्ध बनती है आने वाले जन्मों के लिए। वो हमारी अविनाशी कमाई है। तो राजयोग के द्वारा इस राज को जान करके हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए भी समय निकालते हैं। हमें पता है कि श्रेष्ठ कर्मों की कमाई ही आत्मा की अविनाशी कमाई है, ये हमारे साथ जाने वाली है। तो सारा समय केवल धन कमाने में या केवल संबंधों के निर्वाह में या शरीर के निर्वाह में ही हम व्यतीत नहीं कर देते, लेकिन कुछ समय हम अवश्य अपने लिए भी निकालते हैं। तो इस तरह से राजयोग से जो हमें शक्तियां और गुण विकसित होते हैं, उससे हम विकारों को जीत लेते हैं। काम विकार पर जीत होने लगती है, क्योंकि हम आत्मिक दृष्टिवृत्ति का अभ्यास करते हैं। आत्मिक दृष्टिवृत्ति शुद्ध दृष्टिवृत्ति है, वो शरीर की सीमाओं से हमें ऊपर उठाती है, क्योंकि आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है। और इस तरह से हमारे मन में पवित्रता आने लगती है। क्रोध पर हम जीत पाते हैं, क्योंकि शांति की शक्ति आ जाती है हमारे मन में। प्रेम, दया, करुणा, क्षमा के गुण विकसित होने लगते हैं, तो या तो हमें क्रोध ही नहीं आता, और अगर आता भी है तो हम बहुत ही सहज उस अपने इमोशन पर विजय पा लेते हैं। लोभ समाप्त होता है, क्योंकि एक राजयोगी स्वार्थी नहीं होता है, परोपकारी होता है, और हम संतोष का गुण अपने जीवन में अनुभव करते हैं। मोह समाप्त होता है क्योंकि हमें पता है सब कुछ विनाशी है, हमारे साथ जाने वाला नहीं है, तो हम ट्रस्टी भाव से जीवन जीते हैं। ट्रस्टी भाव माना सब कुछ है, सब कुछ प्रयोग करना है, लेकिन मेरा नहीं है। जब तक हम यूज कर रहे हैं ठीक है, बाद में ये किसी और को ट्रांसफर होगा। ऐसे ही अहंकार समाप्त होता है क्योंकि हम समझते हैं कि करण करावन हार परमात्मा है, मैं निमित्त हूँ। तो निमित्त समझने से वो निर्माणता का भाव, नम्रता का भाव हमारे जीवन में आने लगता है, और ये परिवर्तन से हमारा जो स्व परिवर्तन होता है उससे हम वर्तमान जीवन में भी सुख शांति का अनुभव करते हैं, और उसके साथ साथ भगवान के भी इस विशाल कार्य में हम सहयोगी बन जाते हैं। तो ये थी राजयोग के द्वारा प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियां और गुण। ओम शांति। तो अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे।